జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద
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 జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద
జయ ద్వైత చంద్ర జయ
జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద
జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద
జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से विश्वंभर जो निमाय पंडित हैं वो अपने शिष्यगणों को पढ़ा रहे थे नवद्वीप में। उनके जो गुरु गंगादास पंडित की डांट खाने के बाद एक नगरवासी के आंगन में, तो उसी समय साइड में एक घर था जहां एक ब्राह्मण भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहा था। तो जैसे उसने श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का एक श्लोक पढ़ा और जिसमें वर्णन किया कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का, तो वैसे निमाय पंडित अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और उस समय वो श्लोक की ध्वनि उनके कान में गई और वो भावावेश में आकर वहाँ ही बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही लोटपोट हो गए। और फिर ये सब चीजें देख रहे थे और उस भागवत जो पढ़ रहे थे उनका नाम था रत्न गर्भ आचार्य। और फिर निमाय पंडित ने जैसे मूर्छित हो गए पुनः उनको बाह्य दशा प्राप्त हुई और वो फिर कहने लगे बोलो बोलो। तो रत्न गर्भ आचार्य फिर से और तेजी से भागवतम के उन दिव्य श्लोकों का उच्चारण करने लगे। तो उसी समय ये और भावावेश में आते हैं निमाय पंडित और अचानक उनको आलिंगन करते हैं रत्न गर्भ आचार्य को। तो रत्न गर्भ आचार्य को जैसे आलिंगन करते हैं तो ऐसे हो लग रहा था कि जैसे उनके हृदय में ये अचानक कुछ शॉक लग गई है। हाँ, उनके हृदय में जो कृष्ण का जो प्रेम है वो इंजेक्ट हो गया, इंजेक्ट जैसे इंजेक्शन दिया हो चला गया। तो वो इतने विनम्र हो गए रत्न गर्भ आचार्य कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ा और रोने लगे जोर जोर से। और इसी प्रकार से रत्न गर्भ आचार्य निमाय पंडित के इस प्रेम से वो बंध गए। तो यहां तक हम पढ़ रहे थे, तो आज हम आगे पढ़ेंगे। पुनः पुनः पढ़े श्लोक प्रेम युक्त हया बल बल बले प्रभु हुंकार करिया। इस प्रकार से वो पढ़कर अभी शांत हो गए थे लेकिन निमाय पंडित शांत नहीं हुए थे। वो कहते थे कि और पढ़ो, वो और बोल रहे थे कि और मुझे सुनाओ, जोर जोर से कह रहे थे बोलो बोलो। देखिया सब आ रहा ला अपरूप ज्ञान नगरिया सब देखे करे परनाम। तो केवल उनके स्टूडेंट्स ही इस लीला को नहीं देख रहे थे तो बल्कि उनके जो नगर के लोग हैं नवद्वीप के और भी कुछ नगरवासी वो देख रहे थे। और ये देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि निमाय पंडित को क्या हो गया अचानक। और फिर वो सब जो नगर के वासी हैं वो निमाय पंडित को प्रणाम करने लगे। ना पड़िहार बलि लेन गदाधर सबे बसी लेन बेड़ी प्रभु विश्वंबर। तो फिर गदाधर पंडित वहां थे, तो ये गदाधर पंडित निमाय के मित्र भी हैं बचपन से और आगे चलकर वो उनके साथ जाते हैं सन्यास के बाद, जगन्नाथपुरी में भी रहते हैं। और उनका जो विग्रह था टोटा गोपीनाथ तो महाप्रभु गदाधर से बहुत प्रेम करते थे, गदाधर पंडित से। तो गदाधर ने क्या किया, उस ब्राह्मण को कहा कि रुको अभी आगे मत पढ़ो। और फिर सब लोग निमाई के इर्द गिर्द ऐसे राउंड करके बैठ गए। क्षणिक हैला बाह्य दृष्टि गौर राय, केवल केवल प्रभु जिज्ञासे सदाय। तो कुछ ही क्षणों में गौर राय चैतन्य महाप्रभु को पुनः बाह्य ज्ञान हो गया और वो पूछने लगे कि क्या कहते हो तुम। तो ये पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। प्रभु बले के चांचल्य करे लाम आमी, पढ़ो या सकल बले कृत्य कृत्य तुम्हें। तो को कहने लगे उन स्टूडेंट्स को कि मैंने क्या चंचलता किया, अभी कुछ मैंने किया क्या। उनको पता ही नहीं था कि इतना बड़ा कार्य हो गया था। हाँ, तो वो अपने स्टूडेंट्स को कहने लगे कि कुछ मुझसे कुछ चंचलता हुई है क्या। तो बच्चे कहने लगे कृत्य कृत्य तुम्हें, आप तो धन्य हो आप तो धन्य हो। इस प्रकार से सब स्टूडेंट्स कहने लगे। केवल ते पारियामा सबार शकते, अब तक अने निवारिला ना करे अस्तुते। तो इस प्रकार से वो कहने लगे बच्चे कि हम क्या कह सकते हैं आपके ऐसे आचरण के लिए, क्योंकि ये बात का वर्णन करने की हमारे पास शक्ति नहीं है। तो फिर निमाय पंडित ने कहा कि मेरी स्तुति मत करो। उन्होंने शांत कर दिया बाकी सबको। बाह्य पाए विश्वम्बर अपना समरे, सर्वगने चलिले न गंगा देखी बारे। तो ये गंगा से बहुत प्रेम था निमाय पंडित का। हाँ, रोज घर में भी वहां कोई बाथरूम में या किसी शॉवर के नीचे स्नान नहीं करते थे। हाँ, घर से तुरंत दौड़ते हुए गंगा स्नान करने जाते थे। और आप कभी नवदीप जाते हैं और रहते हैं तो एक चीज जरूर करिए, नवदीप में जाएंगे तो रोज विदा जितने दिन होंगे उतने दिन स्नान करिए और फिर आप अनुभव करेंगे कि कितना प्रभाव है वहां जो गंगा बहती है मायापुर के वहां, जहां साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने कई सारे दिव्य लीलाएं की है उनके सारे भक्तों के साथ। और इनका ये नियम ही था। क्या नियम था, महाप्रभु जब सुबह उठते थे घर में भी तो सबसे पहले गंगा में जाके स्नान करके आते थे और फिर स्कूल चले जाते थे। तो यहाँ भी जैसे दोपहर की क्लास खत्म होती थी सारे स्टूडेंट्स को लेकर चलो गंगा स्नान। हाँ, कितना अद्भुत स्कूल है। फिर गंगा स्नान करते थे। तो इन्होंने सबको वो ले गए गंगा को दिखाने के लिए। गंगा नमस्कारे गंगा जल नीला शिरे, गोष्ठी रसहित बसी लेना गंगा तीरे। तो इस प्रकार से यहाँ शिक्षा दे रहे कि हम किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं या फिर कोई कुंड हो या कोई नदी हो तो वहां जाकर सबसे पहले वो जो भी नदी है या जो तीर्थ स्थान है कुंड है, हाँ, तो वो एक पर्सनिफिकेशन है, एक पर्सन है, व्यक्ति है। जैसे गंगा है वो कोई पानी नहीं है, गंगा देवी है साक्षात, है कि नहीं। तो महाप्रभु ने सिखाया कि वहां जाते हैं तो हमें सबसे पहले गंगा को प्रणाम करना चाहिए। किसी भी कुंड में जैसे वृंदावन जाते हैं तो उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए और उस कुंड का या उस नदी का जल का आचमन करना चाहिए और सर में छिड़कना चाहिए। या और फिर महाप्रभु ने यह सब किया अपने सब स्टूडेंट्स के साथ और गंगा के किनारे अभी उनकी क्लास हो रही है। यमुना रतिरे जन बेड़ी गोपगान, नाना क्रीड़ा करी लेना नंदेर नंदन। तो इनका ये जो ग्रुप बैठा था तो ऐसे लग रहा था कि जो सारे गोपों के द्वारा कृष्ण को घेर लिया है, तो वृंदावन का स्मरण हुआ रहा था। सही मत सचिर नंदन गंगा तिरे, भक्तेर सहित कृष्ण प्रसंग विहरे। तो इस प्रकार से जो सची माता के नंदन है श्री चैतन्य महाप्रभु, इन अपने भक्तों के संग में कई प्रकार की क्रीड़ा करते थे और आनंद अनुभव करते थे। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वो जो शिष्य थे स्टूडेंट्स थे कोई वो सामान्य बच्चे थे, नहीं, वो सारे महाप्रभु के नित्य पार्षद है, भक्त है उनके। हाँ, ऐसा कौन है भाग्यवान जिसको लॉर्ड भगवान से साक्षात शिक्षा प्राप्त हो या वो गुरु के रूप में मिल जाए या टीचर के रूप में, कोई ऐसा भाग्यवान नहीं है। कतक्षणे सबारे विदाय दिया घरे, विश्वम्बर चले लेना आपन मंदिरे। उन सबको उन्होंने विदा दे दी, सब वो चले गए स्टूडेंट्स और लॉर्ड चैतन्य फिर अपने घर आते हैं। भोजन करिया सर्व भुवनेर नाथ, योग निद्रा प्रति करी लेना दृष्टिपात। तो फिर उन्होंने भोजन किया जो सारे भुवनों के नाथ हैं। भुवन मीन्स लोक प्लैनेट। तो 14 भुवन माझे, भक्तिनाथ ठाकुर कहते ना 14 भुवन में सार क्या है, भगवान का नाम है। तो ये सारे भुवनों के जो नाथ है उन्होंने योग निद्रा के प्रति दृष्टिपात किया और सो गए। पोहाइला निशा सर्व पढ़ो यार गान, आसिया बसिला पोथी करे ते चिंतन। तो अर्ली मॉर्निंग, अभी तक निमाई पंडित उठे ही नहीं थे, तो सारे बच्चे पढ़ने की जिज्ञासा, इतना ईगरनेस था, पहले पहुंच गए इनके घर के दरवाजे में, जहां हम देखते हैं जन्म स्थान महाप्रभु का, वो स्थान महाप्रभु का घर होता था, योगपीठ। ठाकुर आईला झाट करे गंगा स्नान, बसिया करे न प्रभु पुस्तक व्याख्यान। तो देखा कि सब लोग आ गए, तुरंत गए वो और स्नान करके आ गए और उनके बीच में बैठ के फिर चर्चा करने लगे। प्रभु रनासपुरे कृष्ण व्यतिरेक आन, शब्द मात्रे कृष्ण भक्ति करे व्याख्यान। तो निमाय पंडित जब स्नान करके वापस आते हैं तो जब उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो उनके मुख से कृष्ण के अलावा कोई चीज नहीं निकलती है, और किसी भी शब्द की वो व्याख्या करते थे, जो चीज वो व्याकरण पढ़ाते थे या न्याय शास्त्र पढ़ाते थे, तो केवल हर शब्द की व्याख्या वो कृष्ण कृष्ण करते थे, किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण शब्द के पास लाते थे। पढ़ो या सकले बले धातु संज्ञाकार, प्रभु बोले श्री कृष्ण र शक्ति नाम जार। तो विद्यार्थियों ने पूछा कि जो धातु संज्ञा है वो किसकी है। धातु मीन्स रूट होता है किसी शब्द का, जैसे शश शश धातु से शिष्य शब्द आया है और शश धातु से शास्त्र आया है, तो ये शश मीन्स रूट हो गया, धातु हो गया जो मूल। तो इस प्रकार ने कहा कि ये किसका है, तो महाप्रभु क्या कहते हैं, ये तो कृष्ण की शक्ति का है, ये जो रूट है वो किसका है, कृष्ण की शक्ति का है, अल्टीमेट कृष्ण का ही है। धातु सूत्र बाखाने सुना भाई गण, देखी कार शक्ति आछे करु कखंडन। तो अभी इन्होंने चैलेंज किया कि मेरे सुनो भाइयों, मैं अभी धातु की व्याख्या करता हूं, मतलब हर शब्द का कुछ ना कुछ रूट शब्द है संस्कृत में, जो मूल शब्द है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था शस से शिष्य आता है, इस प्रकार से हर जो भी शब्द है संस्कृत के उनका रूट शब्द होता है। तो इन्होंने कहा अभी मैं ऐसे रूट जो शब्द है धातुओं की व्याख्या करूंगा और मैं देखता हूं कि कौन है जिसमें शक्ति है जो मेरी व्याख्या को खंडन कर सकता है। जत देख राजा दिव्य दिव्य कलेवर, कनक भूषित गंध चंदन सुंदर। तो उन्होंने कहा जितने भी राजाओं को आपने देखा है और उनके जो शरीर है कलेवर वो कई सारे अलंकरणों से या आभूषणों से सुसज्जित होते हैं, और उनके शरीर में गंध सेंट लगा होता है, चंदन लगा होता है। जमलक्ष्मी जहार वचने लोके काय, धातु बिने सुनतार से अवस्था है। तो कहते हैं उनको राजाओं को लोग धर्मराज भी कहते हैं, और ऐसे राजाओं के ऊपर जो लक्ष्मी है वो पूरा अनुग्रह कर देती है, मतलब उनके पास बहुत अधिक धन होता है। और फिर मैं बताना चाहता हूं, वो कहते हैं कि यदि इन राजाओं में धातु नहीं है तो उनकी क्या दशा हो जाती है। तो अभी महाप्रभु रूट की बात कर रहे हैं, तो मतलब कहते हैं कि शरीर तो इतना राजा का भी हो जिसके ऊपर लक्ष्मी का अनुग्रह हो, जो धर्मराज भी है और जिसका शरीर कई चीजों से सुसज्जित है, गंध लगा हुआ है, लेकिन उसमें धातु नहीं है तो वो शरीर क्या है, यूजलेस है। धातु मीन्स अभी उन्होंने आत्मा बोला, महाप्रभु अभी रूट की बात कर रहे हैं कि आत्मा नहीं है तो क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कोथा जाय संगेरा सौंदर्य चलिया, कार्य भस्म करे कार्य एड़े न पुतिया। तो कहते कि धातु या प्राण नहीं है उस शरीर में तो उसका सौंदर्य चला जाता है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसने कितने भी अपने शरीर को डेकोरेट क्यों ना किया हो, ऐसे शरीर में यदि प्राण नहीं है तो या उसको उसको क्या करते हैं, जला देते हैं या फिर जमीन में दफनाते हैं। तो कहते कि यह है धातु नहीं होने का कारण। सर्वदेह धातु रूपे वैसे कृष्ण शक्ति तहां सने करे स्नेह तहां निसे भक्ति। तो कहते हैं कि जब तक इस शरीर में धातु है प्राण है तब तक, और वो धातु या प्राण वो कृष्ण की शक्ति है। जैसे भगवान गीता में क्या कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो ये धातु या आत्मा एक भगवान का अंश है जो भगवान की शक्ति है, और जीव कौन सी शक्ति है, तटस्था शक्ति है। तो इसलिए यहां कहते हैं कि ये कृष्ण की शक्ति है जो सबके शरीर में नियुक्त है या बैठी है, और इसी शक्ति के कारण जब तक प्राण किसी के शरीर में होता है तब तक हम उससे बड़ा प्रेम करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी भक्ति कर लेते हैं। लेकिन जैसे ये धातु प्राण चला जाए हम उस व्यक्ति के पास भी नहीं जाना चाहते, चाहे हमारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो, हम भक्त लोग भी डरते हैं नहीं नजदीक जाना चाहते। तो ये सिचुएशन है, महाप्रभु ये जो शिक्षा देते हैं मतलब बहुत ही स्वाभाविक और लागू होने वाली है। ब्रह्मवश अध्यापक ना बुझय यहाँ हय नय भाई बुझ मन दिया। तो अभी वो कहते कि जितने भी प्रोफेसर लोग आपको पढ़ाते हैं जो टीचर हैं वो इसी बात को नहीं समझ पाते हैं। जैसे आजकल के टीचर साइंटिस्ट नहीं समझ पाते, महाप्रभु ने पहले ही बोल दिया ये जो अध्यापक है ये तो भ्रमित है इस संसार में, और वो इस बात को नहीं जानते और इसी कारण वो करते हैं आत्मा की वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाते। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप लोग बुझ मन दिया, मतलब बुझ मतलब जानो, और मन दिया ठीक से अपना मन दो जो मैं कह रहा हूं उस बात को सुनो। जबे जारे नमस्करे करे मान्य ज्ञान धातु गेले तारे पर शिले करे स्नान। तो कहते हैं कि ये जो प्रोफेसर लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि कुछ लोगों को बहुत सम्मान देते हैं, नमस्कार करते हैं, आदर देते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति के शरीर से यदि प्राण चले जाते हैं तो उसको छूना भी नहीं चाहते, और या छूते भी हैं तो जाके स्नान करते हैं। तो कहते कि ऐसी स्थिति है। जे बापेर कोले पुत्र थाके महासुखे, जे बापेर कोले जिस बाप के गोद में बेटा खेलता है सुख से आनंद लेता है। धातु गेले से ही पुत्र अग्नि देई मुखे कहते कि प्राण चले जाने के बाद वही पुत्र जो पिता के गोद में खेलता है वही अपने हाथ में अग्नि लेता है और बाप के मुंह में डालता है। अब जब शरीर को अंत्य संस्कार करते हैं तो पुत्र जो होता है उसका ये कार्य है मुख अग्नि जैसे कहा, तो फिर जहां मुंह है उधर ही वो आग देता है मुंह में। तो कहते कि ये है सिचुएशन, यदि प्राण चले जाते हैं शरीर से तो फिर खत्म ना, तो क्या रह गया व्यक्ति का। जैसे ये भी कहते हैं बाइबल में कहा जाता है कि आपको सब चीजें जगत की प्राप्त हो जाए और आत्मा ही चला जाए तो फिर क्या फायदा है इसी सारी जगत की चीजें प्राप्त होने का। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को लॉर्ड चैतन्य कहते कि धातु या आत्मा धातु संज्ञा कृष्ण शक्ति वल्लभ सबार देखी यहां दुशुक आचय शक्तिकार। तो वो कहते कि ये धातु संज्ञा है श्री कृष्ण की शक्ति है और जो सबको प्रिय है, कि देखता हूं मैं कि किसमें शक्ति है, जो मैं ये बोल रहा हूं कोई खंडन कर सकता है। अभी देखो कितना प्रैक्टिकल बोला है, कोई इसमें दोष निकाल सकता है इस बात में, नहीं निकाल सकता। तो महाप्रभु चैलेंज करते हैं कि कौन है कि जो आए और मेरे जो ये मैंने व्याख्या की है एक प्रकार से टीका दी है धातु शब्द की, इसको आप कोई खंडन करके दिखाओ। यही मत पवित्र पूज्य जे कृष्ण र शक्ति हे न कृष्ण भाई सब कर दृढ़ भक्ति। तो कहते कि इस प्रकार जो कृष्ण है जो सबसे अधिक पूज्य है और पवित्र है, कहते कि हे मेरे भाइयों आप क्या करो, दृढ़ता से कृष्ण की भक्ति करो। और कैसे करोगे, तो ये है दृढ़ डिटर्मिनेशन। दृढ़ता किसमें थी, हरिदास ठाकुर में थी, और महाप्रभु के सारे भक्ति दृढ़ भक्त थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो ढीला ढाला कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे भक्त थे। एक भक्त 72 आवर्स नाचता था। अभिराम ठाकुर कितने घंटे के लिए वो लंबा वो लॉग लकड़े का गट्टा लेके वो बंसी के समान खड़े थे 2-3 दिन। तो ऐसे ये महाप्रभु के भक्त बड़े अद्भुत है। और यहाँ लॉर्ड चैतन्य स्वयं कहते हैं कि ऐसे कृष्ण जो पूज्य है, सबसे अधिक पवित्र है। और महाप्रभु एक्चुअली देखो ना, यह है प्रीचर क्या करता है बड़े विनम्रता के साथ, क्योंकि एक्चुअली जिस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस पता है ना, उसका हृदय बहुत ये होगा, पिघलेगा और वो सबको रिक्वेस्ट करेगा। लॉर्ड चैतन्य को कृष्ण भक्ति की इम्पोर्टेंस पता है, महानता पता है और वो कितने आवश्यक है हर एक के लाइफ में, ये आप पता है। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को भी बता रहे हैं कि आप सब हे भाइयों, आप क्या करो, कृष्ण की भक्ति दृढ़ता के साथ करो। बल कृष्ण भज कृष्ण सुन कृष्ण नाम,
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 अहर्निश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान,
अहर्निश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान।
महाप्रभु कहते हैं भगवान के चरणों की सेवा की महानता को, कहते कि बोलो, क्या बोलो, कृष्ण बोलो, और भज क्या, किसका भजन करो, कृष्ण का, सुनो क्या, सुनो कृष्ण का नाम सुनो, और अहर्निश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान, दिन रात किसके चरणों का ध्यान करो, कृष्ण के चरणों का। तो ये अभ्यास महाप्रभु हमें सिखाते हैं और कितनी सरल विधि है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है ना, है बहुत सरल। अभी कृष्ण का नाम लेने में इतना तो कष्ट नहीं होता, लेकिन हमें सुबह पता चलता है महाप्रभु और हमें तो टोटली मतलब उल्टा है। लॉर्ड चैतन्य कृष्ण का नाम लेते ही रोते थे और हम भी कृष्ण का नाम लेते सुबह रोते हैं, नहीं ना रोते हैं कि कब 7 बजेंगे या ये कब केशव हरिप्रभु के नियम बंद हो जाएंगे ये हमारा रोना है। तो हमारा रोना कोई कृष्ण के लिए नहीं है। जहार चरण दुर्वा जल दिले मात्र, कबु नहे ये मेरा से अधिकार पात्र। अब देखो ये वृंदावन दास ठाकुर ने कितने अद्भुत इनकी रचना की है। एक्चुअली ये जो सारे श्लोकाज है, पहले जो वैष्णव होते थे वो सारे ऐसे ग्रुप में बैठते थे करताल मृदंग के साथ, इसको गाया करते थे और हर एक के पास चैतन्य भागवत के श्लोकाज होते थे बंगाली में। तो ऐसे वर्णन आता है बंगाल में ऐसे महान महान कई सारे गांव-गांव में जो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके मुख में ये चैतन्य भागवत ऐसा भरा होता था और वो जब भी मिलते थे वो गाते रहते थे, इसको है कि नहीं स्पीड गाने के लिए। तो ऐसा वो उस समय था। अभी तो धीरे धीरे सब लोग भूलते जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरीज को। तो वो कहते हैं कि ऐसे कृष्ण के चरण है कि थोड़ा भी दुर्वा या जल वगैरह अर्पण करते हो कृष्ण के चरणों में तो फिर कभी भी आप यमराज की दंड के पात्र नहीं होने वाले हैं। तो मैं एक मुझे याद नहीं, एक सन्यासी कुछ साल पहले आए थे और उन्होंने कहा था एक स्टोरी कि यमराज डिवोटी को भी ले दे सकता है ब्रह्मचारी आश्रम से अपने रियलिस्ट प्लैनेट में। तो कहते ऐसे एक भक्त को ले गया और वो भक्त कहते क्या मुझे क्यों लाया आपने यहाँ। हाँ तो वो जैसे आज हमने वो ड्रामा में देखा, अलग अलग वकील अपना अपना वो पॉइंट स्थापित कर रहे थे, ये वकील अपना पॉइंट स्थापित कर रहा था, वो अपना स्थापित कर रहा था। तो ये ब्रह्मचारी को जब यम लोक में ले गया तो ये अपना पॉइंट स्थापित कर रहा था कि क्यों मुझे लाया, मैं तो रोज जप करता था, लेकिन कहते आपका ध्यान किसी और में था यमराज कहते। तो जितनी भी बातें इसने बोली यमराज ने सबको क्या किया, काट डाला, कहते कि तुम्हारा स्थान अभी यहाँ ही है। तो इस प्रकार से हमें इतना इजी भी नहीं लेना चाहिए कृष्ण भक्ति को, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमारा मन और हृदय को भी डालना आवश्यक है। जैसे हम जप करते तो जप के समय जप, प्रसाद के समय प्रसाद। तो एक सन्यासी को प्रश्न पूछा कि कृष्ण भक्ति में सफलता प्राप्त करनी है तो उसका ये क्या है, मतलब सीक्रेट क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो भक्त एक समय में एक कार्य करता है वो क्या है, ये सीक्रेट है और वही सफल होगा। हाँ, तो एक समय में दो नहीं। जब हम जब करते तो जब के समय, जैसे आज मीटिंग में हुआ था, मोबाइल नहीं, तो मतलब फिर सफलता नहीं मिलेगी। जब के समय जब करें, स्टडीज के समय स्टडी करें, श्रवण के समय श्रवण करें, अटेंटिव। तो ये ऐसे है भक्त का जीवन। और जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बारे आता है, जैसे हमारे वृंदाकुंड प्रभु हैं, उनको कोई ऐसा इंचार्ज नहीं होगा जो ये उनको कभी बोलता होगा या पीछे लगता होगा या फोन करता होगा कि आपको जाना ही है, चाहे वो फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, वो जाना मीन जाना कृष्ण की सेवा के लिए। तो ऐसा लाइफ महाप्रभु के भक्तों का था। हाँ, तो एक समय में एक चीज है, श्रवण करना है, तो बाकी संसार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं घर छोड़ के आया हूँ, मैंने इतने अच्छे मेरे माता पिता को त्यागा है, मेरे भाई बहन धन जमीन सबको त्यागा है, और यहाँ आकर मैं सुनना है मुझे कृष्ण के बारे में, तो अभी कृष्ण ही चाहिए मुझे अभी श्रवण के लिए। और जब मुझे जप करना है तो अभी किसका जप करना है, कृष्ण के ही नामों का। तो इस प्रकार से ये भावना विकसित करनी होगी, और ये भावना विकसित नहीं करते तो दिन चले जाते हैं। फिर हम 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 2001 में ज्वाइन किया था, अरे अभी 2009 हो गया, और ऐसे लग रहा है कि कल 9 ही दिवस हो गए हैं। हाँ, ऐसे लगता है 5 ही दिन हो गए मुझे आकर यहाँ। तो इस प्रकार से समय किसके लिए नहीं रोकेगा, और वो बहुत तीव्रता से चले जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि जो ये सूर्य है, उद्यान अस्तन, जब वो उदय होता है और अस्त होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन वो कम कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण कथा में लगे रहते हैं उनका जीवन वो कम नहीं करता है। ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं, भौतिक रूप से हमारा ये कम होता होगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमारी जो आयु है वो खत्म नहीं होती। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु इस, और कितनी बार हमने अभी कुछ ही दिनों में सुन रहे हैं, महाप्रभु इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कृष्ण नाम का उच्चारण करो, कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण के कथा आपके मुंह में होनी चाहिए। हाँ, कृष्ण की सेवा करो, उनको अर्पण करो, तुलसी जल वगैरह वगैरह। तो सारा जो भी चीज है ये क्या है, सार है जो महाप्रभु बोल रहे हैं। और इसलिए तो महाप्रभु एक चीज देने के लिए आए हैं, वो क्या है, कृष्ण का जो अद्भुत प्रेम है, और वही हमारे जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि कब वो दिन आएगा कि थोड़ा भी तो कृष्ण के प्रति थोड़ा प्रेम जागृत हो हमारे लिए। और वो करना ही है, और वो होगा, एक दिन आएगा हम सब होंगे कामयाब। ऐसे नहीं, कृष्ण के प्रति वो प्रेम विकसित होगा। कैसे? जब हम आपस में संग में बने रहें। क्योंकि माया क्या करती है, भक्त को अलग अलग कर देते हैं। अरे क्या, कहा भागवतम क्लास में अभी क्यों, मैं FM में सुन लेता हूँ। अकेला रूम में रहेगा बाकी सारे भक्तों पर, और अकेला सुनेगा कहाँ, माया कहेगी नहीं सो जाओ, फिर इधर उधर के विचार आएंगे। FM उधर ऑन होगा लेकिन इधर कुछ और कार्य करता रहेगा रूम में, या आश्रम में घूमता रहेगा या सो जाएगा। तो माया क्या करती है, प्रभुपाल ने कहा कि जब हम इकट्ठा होंगे तो हम खड़े रह पाएंगे, और जब अलग अलग होंगे फॉल, प्रभुपाद कहते गिर जाएंगे। तो इसलिए जैसे एक कई सारे प्रभुपाद ने कहा लकड़ी इकट्ठा करो, उसको ब्रेक नहीं करोगे, लेकिन एक एक लकड़ी को आप ब्रेक कर सकते हो। तो माया बहुत चलाते है, वो कहते कि क्या करना है सबके साथ सुनना, चैतन्य भागवत या फिर भगवत गीता में तो अकेला पढ़ लूंगा, या भागवतम का श्लोक में पढ़ लूंगा या कुछ करूंगा, तो हम स्किप करते हैं। और फिर धीरे 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 हम कृष्ण चेतना में नहीं जाते, कोई और चेतनाएं विकसित होती हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हजार बार बोल रहे हैं, और अभी आपको उदाहरण देंगे कि देखो क्या क्या किया, क्यों करना चाहिए आपको, कृष्ण की शरण क्यों करनी चाहिए, उनके चरणों का सेवा क्यों करना चाहिए, उनका ही नाम लेना क्यों चाहिए। तो महाप्रभु कहते हैं, अघबक पुत नारे जे कैला मोचन भज भज से नंद नंदन चरण। कहते कि अघबक पुत नारे, अघासुर बकासुर पुतना, ये तीनों भाई बहन एक ही श्लोक में डाल दे, तीनों लीला हमारे आचार्य गणों का इतने एक्सपर्ट है कि आप एक ही श्लोक में ये कितना बड़ा कृष्ण कथा कर सकते हो। हाँ एक ही लाइन में आगा बका पुत नारे जय कैला मोचन भज भज सही नंद नंदेर नंदन कि नंद महाराज के जो पुत्र है कृष्ण उनका भजन करो। अरे उन्होंने तो इतने बड़े बड़े आसुरों का उद्धार किया है, हम तो कोई आसुर है नहीं इतने बड़े, छोटे छोटे आसुर हो सकते हैं। पुत्र बुद्धि छाड़ी आजा मिलस स्मरणे चलिला वैकुंठ बजस्ते कृष्ण चरणे। देखो अजामिल इतना आसक्त हो गया था वेश्या के प्रति, हाँ लेकिन जब पुत्र पुत्र का नाम लेते लेते उसकी ऐसी बुद्धि हो गई कि उसने कृष्ण का स्मरण हो आया उसको नारायण का, और इतना ही इनफ था उसके उद्धार के लिए, वो वैकुंठ में चला गया। जहार चरण सेवे शिव दिगंबर, जिनके चरण कौन सेवा करते हैं, शिव जी दिगंबर है वो, दिग अंबर, दिग मीन्स कपड़े, अंबर मीन्स आकाश, जिन्होंने कपड़े क्या धारण किए, आकाश जिनके वस्त्र है, मतलब जो नग्न है एक प्रकार से, जैसे दिगंबर कहते ना हम। जे चरण सेवे बारे लक्ष्मी रा आदर, और जो चरणों की सेवा करती है कौन, लक्ष्मी, इसलिए तो लक्ष्मी का बहुत आदर करते हैं लोग, क्यों करते आदर, क्योंकि वो भगवान के चरणों की सेवा करती है। अनंत जे चरण महिमा गुण गाय दंते तृण करी भज हे न कृष्ण पाय। कहते कि अनंत जो कृष्ण के चरणों का वर्णन करते हैं तो कहते कि आपने दांतों में क्या पकड़ो, तिनका, और कृष्ण के पाय मीन्स चरणों को भजो, तो तिनका का मतलब क्यों बोला इन्होंने, कहते कि विनम्रता के साथ भक्ति करो। हाँ तो भक्ति में क्या आवश्यक है, विनम्रता, यदि विनम्रता नहीं है तो भगवान का एक गुण है, आप कृष्ण बुक में पढ़ेंगे कृष्ण लीला में तो कई स्थानों में भगवान कभी भी अपने भक्तों का अहंकार सहन नहीं होता है, हाँ उनको सहन नहीं होता, जैसे ऐसे कई इंद्र को कितना अहंकार आ गया, शिव जी या कई कई सब सबका अहंकार उन्होंने चूर्णित कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, हाँ कालिया के अहंकार को भी उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो वो कहते हैं कि इसलिए विनम्रता के साथ कृष्ण का भजन करूंगा, क्योंकि विनम्रता ऐसी चीज है जो कृष्ण को बहुत अधिक आकर्षित करती है, भक्त की जो विनम्रता है। और हम हमारी परंपरा में जितने भी भक्त हुए हैं उनकी आप प्रार्थना पढ़ते हैं तो कितना दयनीय विनम्रता उनके इसमें प्रदर्शित होती है। आप देखो चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ श्रील कृष्णदास कविराज ने लिखा है, हाँ कोई ऐसा ग्रंथ लिखता, बाहर लोग कितना अपना बखान करते हैं बड़े बड़े ग्रंथ लिख के, कृष्णदास कविराज ने इतना अद्भुत ग्रंथ लिखा, इतना स्वीट मीठा, गुलाब जामुन से भी इतना अधिक मीठा है चैतन्य चरितामृत, गा गा के आप इतना जितना अधिक गाओगे महाप्रभु की लीलाओं को उतना आपके मुंह में स्वीट स्वीटनेस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यही तो खासियत है। जैसे चांटिंग में हमारा चांटिंग करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन प्रभुपाद ने कहा चांटिंग करते रहो, नाम लेते रहो, जब नाम लेते लेते रहेंगे तो फिर जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें जॉन्डिस का बीमारी है, तो यही उपाय है। इसलिए विनम्रता के साथ जैसे कृष्णदास कविराज ने कहा, पूरी शहर केटा है मुई से आधम, मैं कितना आधम व्यक्ति हूं कि मल में गिरे हुए कीड़े से भी आधम, मोर नाम जय लय मेरा तार है पुण्य क्षय, ऐसे कुछ है कि मेरा नाम जो लेगा हाँ उसका पुण्य खत्म हो जाएगा और पाप हो जाएगा, बल्कि आप देखो कृष्ण दास का नाम लेने से आपका पाप क्षय हो सकता है, उनके नाम में किसका नाम है, कृष्णदास, हाँ अद्भुत है कृष्णदास कविराज, तो इस प्रकार से इतने महान ऐसे ऐसे भक्त हैं, लेकिन उनकी इतनी विनम्रता है कि महाप्रभु कहते थे कि ये जो सनातनी है वासुदेव विप्र है, वासुदेव ने जिसने कहा कि हे कृष्ण मुझे देखा नहीं जाता, सारे लोग संसार में इतना दुख प्राप्त कर रहे हैं, सबका दुख मुझे दे दो और सबको आपके धाम ले जाओ, तो महाप्रभु ने इतनी दीनता देखी सबके लिए, इतनी विनम्रता, उन्होंने कहा कि हे वासुदेव तुमने मुझे खरीद लिया है और आप जहां चाहो मुझे बेच सकते हो, तो विनम्रता ये एक भक्त का बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि कोई एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसको बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं तो वो अच्छे अच्छे मैंगोज आ जाते हैं उस ट्री को, तो वो ऐसे ऊपर नहीं होता कि देखो कितने बड़े बड़े मैंगो है मेरे पास, क्या होता है झुकता है, तो उसी प्रकार से ये कृष्ण भावना में भी जितना अधिक हम सो कॉल्ड सीनियर, हम सोचेंगे कि बहुत सालों से मैं हूँ, या मैं बहुत अधिक ज्ञान हूँ, या मेरे पास एक पोजीशन है, हाँ, तो हमें और अधिक ये विनम्रता लानी चाहिए। तो महाप्रभु आगे कहते हैं, जावत आचय प्राण देह आचे शक्ति तावत करह कृष्ण पाद पद में भक्ति। तो महाप्रभु कहते हैं कि जब तक आपके शरीर में प्राण है और आपके हाथ पाँव सब कुछ चल सकते हैं, आप सुन सकते हो, तब तक क्या करो, कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आप भक्ति विकसित करो। और चाणक्य पंडित का भी ऐसे ही एक श्लोक है कि जब तक आपने मृत्यु को दूर रखा है, मतलब मृत्यु अभी तक नहीं आया, उससे पहले क्या करो, कृष्ण के भजन में लग जाओ। और ये महाप्रभु कहते हैं कि जब तक आपके हाथ पाँव ठीक है, बोल सकते हो, दौड़ सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, सुन सकते हो, तुषा कर सकते हो, तब क्या करो, अभी कृष्ण के चरण में भक्ति को विकसित करने में लग जाओ। ये आपका असली स्वार्थ है, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा हम भक्ति में आए हैं, तो हम खुद अपना खुद एक एरोप्लेन है, विमान है, जैसे 5 विमान आकाश में उड़ते हैं और कोई वैमानिक बीमार हो गया या किसी का पेट्रोल खत्म हो गया तो दूसरा विमान से वो डाल सकता है उसमें, नहीं डाल सकता, केवल फोन करके प्रेरित करेगा, अरे नहीं आप उड़ो और ये करो, लेकिन केवल हेल्प कर सकता है, लेकिन वो डाल नहीं सकता उसमें। तो वैसे ही हमारी स्थिति है, भक्त लोग हमें केवल हेल्प कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन जो उत्साह हमें स्वयं ही लाना होगा और भक्ति स्वयं ही करनी पड़ेगी, अन्यथा नहीं। नहीं तो फिर जैसे विमान ऊपर उड़ रहा है, डीजल खत्म, नीचे आ जाएगा। हाँ, तो वैसे ही स्वयं के लिए खुद का भक्ति खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन भक्त लोग हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे जप में रीडिंग नहीं हो रहा है, मेरा साधना और मैं पूरे सेवा में रहता और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा दिन पूरा कैसे एडजस्ट करूं, कि मेरा श्रवण भी हो जाए, सेवा भी हो जाए, रीडिंग भी हो जाए, पता नहीं चलता कई बार। तो भक्त लोग, कोई सीनियर भक्त कह सकता कि ये हो सकता है, इस प्रकार से ये पढ़ो, ये करो, वो करो, तो केवल सहायता कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा घोड़े को आप पानी के तालाब के पास ले जा सकते हो, लेकिन घोड़े को पानी पीना है या नहीं पीना वो घोड़े के ऊपर ही है। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। फिर एक आखिरी पैर पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर है, मेरे पीछे दोहरा ये, कृष्ण माता कृष्ण पिता प्राण धन, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन, चरण धरिया बलि कृष्ण देह मान, चरण धरिया बलि कृष्ण देह मान, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन, चरण धरिया बलि कृष्ण देह मान। महाप्रभु ने अभी अपनी विनम्रता की हादी पार कर दी। महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण हमारे माता हैं, कृष्ण आपके पिता हैं, कृष्ण ही प्राण हैं, और क्या कर रहा हूं मैं, चरण धरिया बोली, कहते मैं आप सबके चरण पकड़ रहा हूं, किस लिए, कृष्ण देह मन, कि आपका मन कृष्ण में लगाओ। देखो लॉर्ड चैतन्य क्या करने आए हैं, पाव पकड़ पकड़ के, क्योंकि भक्ति कभी फोर्स से नहीं की जा सकती, जैसे इन्होंने कृष्ण ने फोर्स नहीं किया अर्जुन को, कृष्ण ने नहीं कहा कि अरे कृष्ण देखो 45 मिनट मैंने इतना तुम्हें पूरा सुनाया है और इतना समय तुमने मेरा खाया, युद्ध तो करो नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि कुछ मेरी बदनामी करेंगे। तो लेकिन नहीं, कृष्ण ने क्या कहा, यथे चेसी तथा करो। तो कहते कि हाँ, नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादा चितं करिष्ये वचनं तव, अभी मेरा नष्ट हो गया है मोह और अभी मुझे स्मृति वास्तविक क्या करना चाहिए वो प्राप्त हो गया है, और अभी मैं क्या करूंगा, करिष्ये वचनं तव, जैसे आपने कहा है वैसे ही मैं करूंगा। तो महाप्रभु देखो, इससे कोई, इसलिए महाप्रभु को महावदान्याय कहा गया है, कि आपके पाव पकड़ पकड़ के कह रहे हैं, मसाज कर रहे हैं पाव को, कह रहे कि प्लीज कृष्ण में मन लगाओ, कृष्ण में मन लगाओ। और चैतन्य भागवत की एक बात मैंने देखी कि मैंने पर्सनल कितना कृष्ण कृष्ण नहीं बोला होगा, लेकिन हर प्यार में महाप्रभु कृष्ण वर्ड लाते, कितनी बार, अभी जो हमने प्यार पढ़ा इसमें 5 या 6 बार होगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो लॉर्ड चैतन्य इस बात को जोर दे रहे हैं और वो अपनी वदान्यता को स्थापित कर रहे हैं, उदारता को, प्लीज हमें आपके चरण पकड़ता हूँ, प्लीज क्या करो, कृष्ण में मन लगाओ बाबा, मन लगाओ, मन लगाओ। कैसे लगेगा? हरे इस प्रकार से महाप्रभु, तो इस केवल महाप्रभु के इस गुण को आप सोचोगे ना पूरे दिन भर रात भर, कि महाप्रभु पाव पकड़ के उन सबको कह रहे कि अरे कृष्ण में मन लगाओ, तो आप इतना आनंद अनुभव करोगे। और ये केवल ध्यान में रखेंगे तो हम भक्ति में सीरियस हो जाएंगे, चांटिंग के समय भी स्मरण करेंगे, देखेंगे लॉर्ड चैतन्य इतना चाहते हमारे लिए, जैसे हमारे माता पिता पूरा खुद नहीं खाएंगे खुद नहीं पिएंगे, लेकिन सबसे पहले बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे। तो कभी हमें आभास हो जाता है कि अरे देखो ये इतना कष्ट उठा रहे, तो हमारे मन में थोड़ा निर्लज्जता अनुभव होती है और फिर आदर महसूस होता है उस व्यक्ति के प्रति। तो वैसे ही महाप्रभु के प्रति एक आसक्ति या प्रेम अनुभव होगा, इस बात को केवल स्मरण करते हैं। श्री चैतन्य देव के, गौरांग महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के, चैतन्य भागवत के, श्री वृंदावन दास ठाकुर के, गौर प्रेमानंद के।